एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज ग्रंथसार में हम एक ऐसी रचना पर, एक ऐसे उपन्यास पर बात करने वाले हैं जिसने भारतीय साहित्य पर, खासकर विभाजन के दर्द को समझने और महसूस करने के तरीके पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है।
हाँ।
हम बात कर रहे हैं अमृता प्रीतम जी के कालजयी उपन्यास पिंजर की।
अमृता प्रीतम नाम ही काफी है ना? पंजाबी और हिंदी साहित्य की वो एक बेबाक आवाज,
बिल्कुल,
जिन्होंने ना सिर्फ अपनी लेखनी से दिलों को छुआ बल्कि मतलब समाज की जो जड़ हो चुकी सोच थी ना, उस पर भी सवाल खड़े किए।
सही कहा।
और पिंजर 1950 में छपा ये उपन्यास, सोचिए विभाजन की आग अभी ठीक से ठंडी भी नहीं हुई थी।
हाँ बिल्कुल,
उस वक्त ये लिखना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी।
यकीनन, और वो पहली पंजाबी लेखिका थीं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी वो नज्म आज आखा वारिस शानो,
वो तो रोंगटे खड़े कर देती है।
हाँ, वो तो जैसे विभाजन की त्रासदी का एक दस्तावेज ही बन गई। और पिंजर ये उपन्यास उसी त्रासदी को खास तौर पर औरतों के नजरिए से देखता है,
उनके जिस्म पर, उनकी रूह पर जो जख्म लगे उनको दिखाता है।
और शीर्षक ही कितना कुछ कह देता है, नहीं? पिंजर मतलब हड्डियों का ढांचा,
आत्मा के बिना शरीर।
तो आइए इस कहानी के संसार में जरा उतरते हैं। कहाँ से शुरू होती है ये दास्तान?
देखिए, कहानी हमें ले जाती है बंटवारे से पहले के पंजाब। एक गांव है चट्टवाणी।
अच्छा।
माहौल ऐसा है कि मतलब ऊपर से देखने में शांति है, हिंदू मुसलमान साथ रह रहे हैं।
सामान्य जीवन जैसा?
हाँ, लगता तो वैसा ही है, लेकिन जमीन के नीचे ना वो पुरानी रंजिशें हैं, खानदानी झगड़े हैं, समाज के सख्त नियम हैं, वो कहीं ना कहीं सुलग रहे हैं।
अच्छा, एक तनाव है मतलब।
हाँ, एक अनदेखा सा तनाव। और यहीं हमारी मुलाकात होती है पुरो से।
पुरो कहानी की नायिका?
हाँ, एक हस्ती खेलती जिंदगी से भरपूर लड़की।
हाँ,
अच्छे खाते पीते खुशहाल घर की है। पास के ही गांव रत्तोवाल के रामचंद्र से उसकी सगाई हो चुकी है। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, सपने देखे जा रहे हैं। मतलब एक तस्वीर है बिल्कुल महफूज, तयशुदा भविष्य की।
एक तस्वीर जो बहुत जल्द, बहुत बेरहमी से टूटने वाली है। कहानी का पहला बड़ा और शायद सबसे दुखद मोड़ वो यहीं आता है ना?
हाँ बिल्कुल, पुरो की ये जो शांत सपनों भरी दुनिया है ना, वो एक झटके में बिखर जाती है।
कैसे?
जब राशिद नाम का एक मुसलमान नौजवान उसका अपहरण कर लेता है।
अपहरण?
हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि राशिद ये किसी इश्क या मतलब निजी चाहत में नहीं करता।
अच्छा, तो फिर क्यों?
ये दरअसल दो परिवारों के बीच चली आ रही पुश्तैनी दुश्मनी का नतीजा है। बदला?
ओहो, खानदानी दुश्मनी।
हाँ, कहानी में जिक्र आता है कि पुरो के पुरखों ने राशिद के खानदान की किसी औरत के साथ कोई नाइंसाफी की थी। और अब राशिद उस बेइज्जती का बदला वो पुरो को उठाकर ले जाकर चुका रहा है।
मतलब एक जीती जागती लड़की पल भर में खानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ जाती है।
बस एक वस्तु की तरह।
यहीं अमृता जी उस भयानक सच पर उंगली रखती हैं कि कैसे मर्दों की लड़ाइयों में, उनकी इज्जत और उनके बदले की आग में, औरतें महज एक चीज बनकर रह जाती हैं।
हाँ, उनका शरीर जैसे जंग का मैदान हो।
बिल्कुल, पुरो की तकदीर सिर्फ उसकी अपनी नहीं रही, ये उस पूरी सामाजिक सोच का नतीजा है जहां बदला लेने का सबसे आसान तरीका औरत की अस्मिता पर हमला करना समझा जाता है।
और ये तो बदले का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला लगता है।
हाँ, एक दुष्चक्र।
और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। पुरो की कहानी का शायद सबसे सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा तो अब आता है।
अच्छा, अपहरण से भी ज्यादा?
हाँ, कुछ वक्त बाद ना पुरो किसी तरह हिम्मत जुटाकर राशिद की कैद से भाग निकलती है।
अच्छा, वो भाग जाती है?
हाँ, जख्मी हालत में है पर उम्मीदों से भरी हुई है। वो अपने माँ बाप के दरवाजे पे पहुंचती है,
घर की तरफ।
सोचती है अपना घर है, अपने लोग हैं, पनाह मिलेगी, मरहम मिलेगा।
लेकिन
दरवाजा खुलता नहीं, या यूं कहें कि खुलकर भी बंद हो जाता है।
बिल्कुल,
दरवाजा खुलता है पर उसके अपने ही, उसके माँ बाप उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं।
क्या, अपने ही लोग?
हाँ, उसका बाप कहता है हमारे लिए तुम उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम्हें वो उठा ले गया था।
उफ।
वो कहते हैं कि अब वो नापाक हो चुकी है, खानदान की इज्जत पर बट्टा लग गया है।
इज्जत?
हाँ, और उसे वापस घर में रखना नामुमकिन है। घर की दहलीज वो उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है।
ये सुनना भी कितना मुश्किल है।
अपहरम की हिंसा उससे भी ज्यादा गहरी चोट शायद इस तिरस्कार ने दी होगी पुरो को।
यकीनन।
और यहीं पे शायद वो पिंजर वाली बात वो सचमुच घटित होती है ना?
हाँ बिल्कुल।
शरीर तो कैद हुआ ही था, पर यहाँ तो जैसे जैसे परिवार ने, समाज ने उसकी आत्मा को ही नकार दिया।
उसकी पहचान, उसका वजूद सब छीन लिया गया।
अब वो सिर्फ एक ढांचा है, एक पिंजर। समाज की इस खोखली इज्जत की वेदी पर कैसी कैसी बलियां चढ़ाई जाती हैं, ये बात ये आज भी सोचने पर मजबूर करती है।
और इस तिरस्कार के बाद सोचिए पूरो के पास क्या चारा बचता है, वो कहाँ जाती?
कहीं नहीं।
हाँ, मजबूरन वो राशिद के पास लौट जाती है।
उसी के पास जिसने उसे अगवा किया था।
हाँ, अब उसे एक नया नाम मिलता है, हमीदा। उसका मजहब बदल दिया जाता है, राशिद से उसका निकाह पढ़वा दिया जाता है।
एक पूरी नई पहचान जो उसकी अपनी नहीं है।
बिल्कुल। और इसके बाद सालों तक पूरो या अब हमीदा एक अजीब सी खामोशी में, एक भावनात्मक शून्य में जीती है।
खोखलापन।
हाँ, वो बीवी होने के और बाद में एक बेटे जावेद की माँ होने के सारे फर्ज निभाती है, लेकिन उसकी रूह जैसे कहीं खो चुकी है। वो बस सांस लेती है, काम करती है, पर अंदर से खाली है, एक चलता फिरता पिंजर।
खलनायक के तौर पर देखना क्या कहानी के साथ न्याय होगा? अमृता जी ने उसके किरदार को कैसे दिखाया है?
ये एक बहुत पेचीदा सवाल है, और अमृता जी ने, जैसा आपने कहा, राशिद को सिर्फ स्याह रंग में नहीं रंगा।
हाँ
हाँ, उसने जुर्म किया है, जाहिर है बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन वो समाज का, उस व्यवस्था का हिस्सा भी है जहाँ मर्द की इज्जत का बदला औरत से लिया जाता है।
वो भी उसी सोच का शिकार है एक तरह से।
हाँ कह सकते हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, हमें राशिद के अंदर का द्वंद, उसका पछतावा, पुरो के लिए एक अजीब सी हमदर्दी और शायद एक हिफाजत का एहसास भी नजर आता है।
अच्छा।
वो खुद भी अपने किए का एक तरह से कैदी बन जाता है।
दोनों के बीच कोई सीधा संवाद नहीं है, पर अपराध बोध है, मजबूरी है, और शायद वक्त के साथ पनपी एक अनकही समझ का एक बहुत मुश्किल रिश्ता बन जाता है।
तो क्या पुरो हमेशा हमेशा इसी भावनात्मक शून्य में, इसी पिंजरे वाली हालत में जीती रहती है, या वक्त के साथ उसमें कुछ बदलाव आता है? बदलाव आता है, जरूर आता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। सालों तक अपना दर्द चुपचाप सहने के बाद ना, पुरो अपने जाती गम से थोड़ा ऊपर उठती है। वो अपने आसपास की दूसरी दुखियारी औरतों के दर्द को महसूस करने लगती है,
दूसरों के दर्द को।
हाँ, गांव में कोई पागल औरत है, कोई बेसहारा लड़की है, पुरो चुपचाप बिना जताए उनकी मदद करने लगती है।
अच्छा।
ये ऐसा नहीं है कि उसकी पुरानी पहचान लौट रही है या वो पुरो बन रही है फिर से।
नहीं, तो फिर क्या है ये?
बल्कि ये है कि वो अपने बिखरे हुए वजूद की राख से दूसरों के दर्द में हिस्सेदार बनकर जीने का एक नया मकसद ढूंढ रही है।
एक नई तरह की ताकत।
हाँ, वो एक बेबस शिकार से हमदर्दी और मदद करने वाली एक खामोश ताकत बन रही है, अपने दर्द को सहानुभूति में बदल रही है।
और इसी पृष्ठभूमि में वो ऐतिहासिक भूचाल आता है, 1947 का बंटवारा।
हाँ।
जिसने न जाने कितनी पुरो जैसी कहानियों को जन्म दिया, शायद उससे भी ज्यादा भयानक।
हाँ, 1947 की आंधी, वो तो सब कुछ तहस नहस कर देती है। मजहब के नाम पर वहशीपन का एक नंगा नाच होता है,
लूटपाट, आगजनी,
और खास तौर पे औरतें, उनका अपहरण, उनके साथ हिंसा, ये सब आम हो जाता है। पुरो देखती है कि जो कल तक सिर्फ उसकी कहानी थी, वो अब हजारों लाखों औरतों की सच्चाई बन चुकी है।
उसका निजी दर्द जैसे अब सामूहिक हो गया।
हाँ, और इसी कयामत के बीच, दंगों के दौरान, पुरो को लाजो मिलती है।
लाजो, ये कौन है?
लाजो ये उसी रामचंद की छोटी बहन है जिससे कभी पुरो की सगाई हुई थी।
ओहो, रामचंद की बहन।
हाँ, और लाजो का भी अपहरण हो गया है।
हे भगवान।
पुरो अपनी जान पर खेलकर लाजो को ढूंढती है, उसे अपने घर लाती है, उसे पनाह देती है और उसकी हिफाजत करती है।
मतलब जिसने खुद इतना सहा, वो अब दूसरी शिकार हुई लड़की को बचा रही है।
बिल्कुल।
और फिर?
फिर कहानी में रामचंद की वापसी होती है, वो रामचंद जिससे पुरो की शादी होने वाली थी। हाँ, वही रामचंद। अब वो बड़ा हो गया है और सरकारी तौर पर उन औरतों को बचाने और उनके घर वापस पहुंचाने का काम कर रहा है जिन्हें दंगों में अगवा कर लिया गया था।
अच्छा, वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में है।
हाँ, वो अपनी बहन लाजो को ढूंढते ढूंढते राशिद के गांव पहुंचता है।
और वहां
इतने सालों बाद उसकी नजर पुरो पर पड़ती है, वो उसे पहचान लेता है।
क्या मंजर होगा वो।
हाँ, बहुत भावुक पल है वो उपन्यास में। रामचंद पुरो को अपने साथ वापस हिंदुस्तान चलने को कहता है।
वापस?
हाँ, वो उसे उसका पहला वाला घर, उसकी पुरानी जिंदगी, वो सब वापस देने का वादा करता है।
एक ऐसा मोड़ जहाँ पुरो के पास अतीत में लौटने का एक दरवाजा खुलता दिखता है, क्या वो उस दरवाजे से गुजर जाती है?
नहीं
नहीं
नहीं, और पुरो का इनकार ही इस उपन्यास का शायद सबसे शक्तिशाली संदेश है।
क्या कहती है वो?
वो रामचंद से पूछती है, कौन सा घर, किस वतन की बात करते हो तुम, मेरा घर कहाँ है?
सीधा सवाल।
हाँ, वो कहती है कि सरहद के दोनों तरफ उसके जैसी हजारों लड़कियां हैं, जिनका ना अब कोई घर है ना कोई वतन,
जिनका सब कुछ लुट गया।
हाँ, वो कहती है कि ये शरीर यह अब मिट्टी हो चुका है। वो लाजो को रामचंद्र के हवाले कर देती है।
अच्छा, लाजो को जाने देती है।
हाँ, ताकि कम से कम वो अपने घर लौट सके, लेकिन खुद जाने से साफ इनकार कर देती है।
ये सिर्फ एक इनकार नहीं है, ये तो पूरो का अपनी नियति को, अपनी नई पहचान को पूरी तरह मतलब कबूल करना है।
बिल्कुल,
वो धर्म, सरहद और तथाकथित घर की उन तमाम परिभाषाओं को खारिज कर देती है जिन्होंने उसकी जिंदगी को तबाह किया।
हाँ, वो अतीत के खोखले वाड़े को ठुकराकर अपने वर्तमान को चुनती है, उस पहचान को जिसे उसने खुद अपने दर्द, अपनी हमदर्दी और अपनी खामोश ताकत से गढ़ा है।
वो उन तमाम बेघर औरतों के साथ, उनके दर्द के साथ खड़ी होती है।
हाँ, ये आत्मनिर्णय का, अपनी शर्तों पर जीने का एक अद्भुत उदाहरण है। उसने अपनी कहानी का अंत खुद लिखा,
उन शर्तों पर जो दुनिया ने नहीं उसने खुद तय की। तो इस पूरी कहानी से गुजरते हुए जो बातें रह रहकर जहन में आती हैं, उनमें सबसे ऊपर शायद यही है कि कैसे समाज, खासकर मर्दों के बनाए नियम और उनकी लड़ाइयाँ, औरतों को मतलब इंसान का दर्जा भी नहीं देते कई बार।
हाँ, उन्हें इज्जत या बेइज्जती का एक निशान बना दिया जाता है, उनका अपना सुख दुख, उनकी अपनी मर्जी जैसे कोई मायने ही नहीं रखती।
और ये इज्जत का भूत, ये तो जैसे इंसानियत से भी बड़ा हो जाता है। पुरो के अपने परिवार का रवैया, उफ, वो इसका सबसे कड़वा सबूत है।
बिल्कुल।
फिर पहचान का सवाल कितना अहम है इसमें। पहचान छीनी जाती है, थोपी जाती है, और फिर पुरो कैसे उन सब के पार जाकर अपनी एक मानवीय पहचान बनाती है जो मजहब और मुल्क से बड़ी है।
हाँ, और घर और अपनेपन की परिभाषा पर भी सवाल उठता है ना। क्या घर सिर्फ चार दीवारें हैं, या खून के रिश्ते, या घर वो जगह है जहां आपकी इंसानियत को आपको समझा जाए।
पुरो का आखिरी फैसला तो घर की पारंपरिक सोच को तोड़ता ही है।
हाँ, और इन सब के बीच, मतलब नफरत और बंटवारे के इतने शोर में, इंसानियत की एक धीमी आवाज भी सुनाई देती है।
जैसे?
जैसे राशिद के अंदर का वो पछतावा, या पुरु का लाजो को बचाना। ये दिखाता है कि करुणा और हमदर्दी का रिश्ता वो मजहब की दीवारों से कहीं ज्यादा ऊंचा है।
ये उम्मीद की किरणें हैं।
हाँ, और जानते हैं, अमृता जी की लिखने की शैली भी कमाल की है। जिस तरह से वो कहानी कहती है ना, वो भी कहानी के असर को कई गुना बढ़ा देता है।
हाँ, उनका अंदाजे बयां, खास तौर पे उनका नजरिया, कहानी ज्यादातर पुरु के नजरिए से कही गई है ना?
बिल्कुल, कहानी कहने का अंदाज ऐसा है कि हम ज्यादातर वक्त पुरु के मन के अंदर झांक रहे होते हैं। पाठक उसके दर्द को, उसकी खामोशी को, उसके अंदर चल रहे तूफान को सीधे महसूस करता है।
इससे कहानी का भावनात्मक असर बहुत गहरा हो जाता होगा।
बहुत ज्यादा। हाँ, कभी कभी नजरिया थोड़ा हटकर राशिद या दूसरों पर भी जाता है, जिससे हमें हालात की पूरी तस्वीर मिलती है, पर केंद्र में पुरु ही रहती है।
और भाषा, अमृता जी की जुबान, वो तो जैसे कम लफ्जों में बहुत कुछ कह जाने का हुनर जानती हैं।
यकीनन, उनकी भाषा बहुत सधी हुई है, कीम अल्फाज, मतलब कम अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उसमें भावनाओं का एक समंदर छुपा होता है।
कोई मेलोड्रामा नहीं, कोई चीफ पुकार नहीं।
बिल्कुल नहीं, दर्द को भी वो एक ठहरी हुई उदासी से, एक गहरी खामोशी से बयान करती हैं। जैसे पुरो का किरदार खामोश रहकर भी कितना कुछ कह जाता है।
प्रतीक भी बहुत गहरे हैं उपन्यास में। शीर्षक पिंजर, खुद में कितना कुछ समेटे हुए हैं।
हाँ, पिंजर सिर्फ पुरो की हालत का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस वक्त के समाज का, उन रिश्तों का भी प्रतीक है जो हिंसा और नफरत के कारण अंदर से खोखले हो चुके थे।
एक रूपक की तरह।
हाँ, ये उन हजारों जिंदगियों का प्रतीक है जो बंटवारे में सब कुछ लुट जाने के बाद सिर्फ ढांचे रह गई थी।
और पंजाब की धरती, जिसका बंटवारा हुआ, वो भी तो पुरो की अपनी जिंदगी के बंटवारे का आईना लगती है। और वो बंद दरवाजा, पुरो के पिता के घर का बंद दरवाजा।
ओहो, वो बंद दरवाजा, वो तो जैसे पितृसत्ता के उस क्रूर चेहरे का प्रतीक है जो अपनी ही बेटी को समाज की झूठी शान के लिए बाहर धकेल देता है।
ये कुछ ऐसे निशान हैं जो कहानी पढ़ने के बाद भी जहन में रह जाते हैं।
हाँ, पुरो के पिता के शब्द, पुरो का खुद को पिंजर महसूस करना और आखिर में रामचंद को दिया उसका जवाब, मेरा घर कहाँ है, हम जैसी लड़कियों का कौन सा वतन है, ये वो लम्हे हैं जो उपन्यास की आत्मा को बयान करते हैं।
सचमुच पिंजर एक ऐसी रचना है जो अंदर तक हिला देती है। ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है।
हाँ, ये हमें याद दिलाती है कि नफरत और हिंसा की कीमत हमेशा इंसानों को चुकानी पड़ती है, और खासकर औरतों को। पर ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है।
नहीं,
ये कहानी हार मानने की नहीं है, बल्कि उस राख से भी उठ खड़े होने की है। दर्द को ताकत बनाने की कहानी है, पुरों की खामोश सहन शक्ति की कहानी है।
और शायद ये भी कि असली पहचान और अपनापन वो किसी सरहद या मजहब के मोहताज नहीं होते, वो इंसानियत और हमदर्दी के रिश्ते में पाए जाते हैं।
बिल्कुल, जाज़दी में भी मानवीय गरिमा और आत्मसम्मान को बनाए रखने की ये एक यादगार मिसाल है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।